जायं विष्णुपाद परमहंस प्रेमराजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस अभय सरल अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जायं विष्णुपाद परमहंस प्रेमराजकाचार्य इस्कॉन फाउंडर आचार्य पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ग्रंथरा श्रीमद भागवत महापुराण की उपस्थित भक्त वृंद की गौर हरि प्रमानंदे गौर हरि प्रमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सम लिबर्टीज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 वासुदेव घोष जी का क्या था फिर वहां आ रहे लिखना चाहिए ना थोड़ा वासुदेव घोष जी के विषय में महानिधि स्वामी जी के पुस्तक से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आचार्यों के जीवन चरित्र से हम लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। वासुदेव घोष जी के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे वो बंगाली टोन में भजन गाया करते थे कि नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर के नृत्य करते थे और उनके जीवन चरित्र में बताया गया है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो श्रीमती राधा रानी के स्वरूप की स्थिति को कांति को महाप्रभु स्वयं प्रकट करने लगते थे केवल भजनावेश में। और उनके चरित्र में यह भी बताया गया है कि गा करके भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के गुणों का गान करके उनके विषय में गाना बना करके गा करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने आचार्यों के तिरोभाव तिथि या आविर्भाव तिथि के ऊपर आचार्यों ने किस ढंग से भक्ति किस विधि से उन्होंने प्राप्त किया भगवान को, कोई गा करके किया है, कोई योग तपस्या करके, कोई त्याग करके पाया है। इसलिए अन्य आचार्यों के विभिन्न प्रकार के ऐसी भक्ति के साधनों को उन लोगों ने अपना करके अपने जीवन चरित्र को कैसे सफल किया, यह शिक्षा मिलती है। इसलिए वासुदेव घोष जी के विषय में महानिधि स्वामी जी जो लिखते हैं गौड़ीय वैष्णव चरितावली में, तो उससे हम लोग थोड़ा सा पाठ करते हैं, उसके बाद भागवत पे चर्चा की जाएगी। श्री वासुदेव घोष तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, इसको बंद कर दीजिए। श्री वासुदेव घोष तथा उनके दो भ्राता माधव और गोविंद, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद हैं। माधुर्य रस में समवस्थित उन्होंने श्री राधिका को अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। इनकी आराधिका आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी थी। देखिए, हम लोग राधे राधे तो करते हैं, लेकिन राधा की एक निष्ठ भक्ति बहुत ऊंच कोटि की है, जिसकी भक्ति स्वयं श्री कृष्ण करते थे। राधा की भक्ति श्री कृष्ण स्वयं करते थे, क्योंकि उनके भावावेश में। इसलिए इन आचार्यों की स्थिति क्या थी हम समझ सकते हैं इनके जीवन चरित्र को पढ़ करके। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष में भी, चाहे राधा सहस्रनाम में भी, श्रीमती राधा रानी का एक नाम कृष्णेश्वरी है, कृष्ण ईश्वेश्वरी, कृष्ण के भी ईश्वरों के ईश्वरी, इतना सब बड़ा शब्द दिया गया है। कृष्ण सबके ईश्वर, और उनकी जितनी ईश्वरता भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, उन सारे ईश्वरता का मालकिन श्रीमती राधा रानी है। तो आचार्यों की स्थिति क्या है, इन चरित्रों से हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। माधुर्य रस में समवस्थित उन्होंने श्री राधिका को अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। वे भ्राता ए भ्रातागण अर्थात माधव और गोविंद और वासुदेव घोष जी, ये तीनों प्रवीणता पूर्वक मधुर एवं सुरीले कीर्तन संपादित करते थे। जब भी वे गाते, चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु तुरंत भावावेश में नृत्य करने लगते हैं। कीर्तन की भाविष्टता भी ऐसी ही है कि जिनको नाचने की मतलब हृदय में भावना नहीं है, लेकिन भक्त लोग जब उछल उछल करके कीर्तन गाते हैं तो अपने आप बंदे हिलने शुरू हो जाते हैं। आज सुबह की मंगला आरती में मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था कि हम लोग लगभग 300 लोग होते हैं, 250-300 लोग मंगला आरती के अंदर अभी, लेकिन जैसे ही शंख बजता है, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र का गान किया जाता है, जैसे ही सारे भक्त दोनों हाथ ऊपर करके जब नृत्य करते हैं, तो मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु के कि पार्षद हैं और महाप्रभु इनको लेकर के वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे महाप्रभु अपने लाख शिष्यों के साथ वृंदावन जाने की परिपाटी को स्थापित कर रहे थे और गान करते नृत्य करते सारे जा रहे थे, तो वो भाव स्फुरित हो रहा था, क्योंकि कीर्तन और भाव ऐसी ही चीज है। इन स्थितियों को अगर हम अपने मन में किसी भी बात को अगर एक बार अपने हृदय में अगर बैठा लेते हैं, तो उसका हम रसास्वादन कर सकते हैं। और यह आस्वादन ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। बाद में तो हम लोग कहाँ कहाँ बट जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब एक निश्चितता की भाव होती है तो आदमी रसास्वादन कर सकता है। मैं सुबह सुबह में मंगला आरती के बाद भी मैं भागवत पढ़ करके देखा हूं, जो चीज एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया जाता है वो जीवन भर भूलता नहीं, लेकिन वो रूटीन बिगड़ जाने के बाद पहले की याद की हुई चीज भी वो भूलती जा रहे हैं, क्योंकि वो रूटीन अब रहा नहीं। इसलिए अगर किसी को भी अगर ज्यादा श्लोक याद करना हो तो कुछ समय निश्चित कर लेना चाहिए सुबह में श्लोक याद करने का या पढ़ने का। जप का टाइम अगर हम कुछ कट करके अगर भागवत पर ध्यान देते हैं तो जप की स्थिति भी, जप की भी क्वालिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि श्लोक का आस्वादन करते हुए हम हरिनाम का आनंद लेते हैं। श्रीमान क्रतु महाराज जी हैं, जब मैं उनको देखा हूं अगर जाप भी करते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या गृहस्थ गुरु भी हैं, जब भी मैं उनको देखता हूं जब करते समय तब भी वो प्रभुपाद की कोई न कोई पुस्तक अपने सामने या कोई न कोई श्लोक रखते हैं, और जब करने के बाद जैसे उनकी जब पूरी होती है तो श्लोक के ऊपर नजर डालते हैं। यह श्लोक का रसास्वादन करने की विधि है, क्योंकि सुबह सुबह जिस श्लोक को हम लोग अंदर डाल लेते हैं उसका रस चलते रहता है अंदर। और हम लोग हरिनाम जाप जो करते हैं भगवान के नाम का गुण का लीला का रसास्वादन करने के लिए ही, और अपने आप में जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जाप करते हैं तो सत्य है कि ये रास है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं अब अपना हृदय जाने। अब देखिए ऐसे गाने के भी भगवान गला दे किसी को कि जिनके कीर्तन करते समय स्वयं भगवान आकर के नृत्य करें। और हम लोग नाचने वाले संप्रदाय से ही हैं, हम लोग तो अपने गांव के तरफ झारखंड में पहाड़ों के ऊपर महाराज के साथ कई बार प्रचार में गए हैं, लोग अपने दरवाजे पर रोक लेते थे एक ताल हो जाए मतलब 5 मिनट यहां नाच लीजिए आप लोग। नाच गा करके भी हम आनंद ले सकते हैं, भगवान के नामों का उनके लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। मेरे को याद है एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज जी क्लास दे रहे थे तो बता रहे थे कि ऐसा कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है, ऐसा कोई दूसरा सोसाइटी नहीं है जो सुबह से ही नाचना शुरू कर देता है। अरे जिसके अंदर आनंद रहेगा वही नाचेगा ना, जो निरानंद रहेगा वो नाचेगा कहां से, वो सोचने में ही लगा रहेगा। इसलिए इस गौड़ीय वैष्णवों के जीवन में बहुत यह शिक्षाप्रद है कि आचार्यों के जीवन चरित्र को पढ़ पढ़ करके अपने अंदर उत्साह भरने की जरूरत है। कोई गा करके भगवान को रिझा सकता है? प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा में सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी आते थे वासुदेव घोष जी, वे चैतन्य महाप्रभु द्वारा आयोजित 7 कीर्तन मंडलियों में से एक की अगुवाई करते थे, और वासुदेव घोष ने अपने गीत संगीत के माध्यम से बंगाल में प्रचार किया, गा गा करके भगवान नाम का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने गौरांग महाप्रभु के विषय में अनेक बंगाली गीत लिखे जो आज भी भक्तगण द्वारा गाए जाते हैं। एक गीत में वे लिखते हैं कि यदि इस कलयुग में गौर सुंदर प्रकट न होते, श्री श्री राधा राधिका रमन जी के प्रकट का नाम लेते ही ठाकुर जी ने अपना पर्दा खोल दिया, श्री राधिका रमन कृष्ण बलराम श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। यदि इस कलयुग में गौर सुंदर प्रकट न होते तो हम किस प्रकार प्राण धारण कर पाते। ध्यान से सुनिए कि उन्होंने गीत किस प्रकार का लिखा। वासुदेव घोष जी, उन्होंने हमें सारे तत्व अर्थात जीवन का मंत्र दिव्य प्रेम प्रदान किया है, जिसके बिना इस जगत में रहना असंभव है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में उन्होंने ऐसा गीत गाया है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम किस प्रकार जान पाते कि श्रीमती राधा रानी दिव्य प्रेम साम्राज्य की महारानी है। भगवान गौर हरि से ये सब बात प्राप्त करने के उपरांत अब हम सोचते हैं कि जीवन जीने योग्य है। अगर गौरांग महाप्रभु की लीला में या उनके संप्रदाय में है, अगर उनके नामों का उनके लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, जुगल रूप की उपासना कर रहे हैं, तब तो यह जीवन जीने योग्य है। अन्यथा जुगल रूप की उपासना के बिना यह कलयुग में खास करके जीना कोई जीना नहीं है। रूपात जी भी कई जगह लिखे हैं इस बात को कि कलयुग में जुगल रूप की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। एक अन्य भजन में वासुदेव घोष कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के रूप में अपनी पूर्व लीला में आप समुद्र पार श्रीलंका तक जाने के लिए पत्थरों का एक नौ सेतु बनाकर सुव्याख्यात हुए। अब इस कलयुग में आपने हमें हरिनाम संकीर्तन रूप सेतु प्रदान किया है, जिसके द्वारा पंगु और नेत्रहीन भी भव सागर को पार कर इस दिव्य परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए कि क्या रचना है, भागवत का श्लोक है। बल्कि भगवान राम क्यों सुविख्यात हुए, तो उन्होंने लंका पार जाने के लिए तैरते हुए पत्थरों से उन्हें पुल बनाया, जिससे वो सुविख्यात हुए। मतलब कि भगवान की भगवत्ता प्रदर्शित होती है। उसी चीज को प्रदर्शित यहाँ कर रहे हैं वासुदेव घोष जी। दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि वह जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हम लोगों के लिए ऐसे हरिनाम रूपी सेतु दिए हैं, जिस पे हम सवार होकर के इस भवसागर से हम पार जा सकते हैं, उनके धाम को जा सकते हैं। अब इससे और क्या भागवत कहता है। केवल भगवान के प्राप्त करने के सारे साधनों का वर्णन भागवत के अंदर है, और वही तरीके वैष्णव लोग गा करके बताते हैं, उदाहरण दे करके बताते हैं। यह भागवत नहीं है तो क्या है। वे राधा माधव की नित्य निकुंज ब्रज लीला में गुण तुंग सखी हैं, उनकी समाधि 64 समाधि में विराजमान है। इतना है महानिधि स्वामी जी वासुदेव घोष के विषय में लिखते हैं। श्रीमान वासुदेव घोष तिरोभाव तिथि महा महोत्सव की। अब आए श्रीमद् भागवत के ऊपर। कथा को कहाँ छोड़े हैं, कौन बताएगा। कथा कहाँ तक पहुंच चुकी है, मतलब प्रतिदिन आने वाले भक्तों को यह स्मरण रखनी चाहिए। चित्रकेतु महाराज, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अंततः देखा जाए तो अभी यह इन श्लोकों के अंदर अभी नारद जी उपदेश दे रहे हैं। जो मंत्र दिए उन मंत्रों की महिमा अभी नारद जी ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र तो दे दिए, दीक्षा तो दे दिया नारद जी ने चित्रकेतु को, लेकिन किसकी दीक्षा दिए, किसकी प्रशंसा, किसके लिए दीक्षा दिए, भगवान के गुणों का गुणगान किया जा रहा है उन श्लोकों के अंदर। शायद 20 नंबर श्लोक मोहन रूपा प्रभु लिए थे, 21, 22 और 23 में एक श्लोक में तात्पर्य नहीं है, लेकिन 22 और 23 में एक एक लाइन का तात्पर्य है, 21 और 22 में एक एक लाइन का तात्पर्य है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 24, जिसके अंदर कृपा जी तात्पर्य लिखते हैं। तो हम पहले 21, 22 और 23 इन श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद तब श्लोक नंबर 24 हम लोग उच्चारण करेंगे। वचस्य परतो प्राप्य एकयो मनसा सह अनाम रूप चिन्मात्र सो ज्ञान सदस्परः। बद्ध जीव की वाणी तथा मन श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाते। यह अगर देखा जाए तो आत्मकथा है, हर व्यक्ति पर यह सिद्धांत लागू हो सकता है। बद्ध जीव की वाणी मन, वाणी तथा मन भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल विचार तथा सूक्ष्म रूपों से परे हैं, अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण उनके अन्य रूपों में से है, वे हमारी रक्षा करें। यह नारद जी की ही उक्ति है, उनकी, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बैठ करके भगवान के गुणों की, जो गुणगान को सुन रहे हैं, जिनके लिए नारद जी ये मंत्र दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो चित्रकेतु को दे रहे हैं। एक लाइन का तात्पर्य इसके अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि इस श्लोक में निराकार ब्रह्म जो श्री भगवान की ज्योति है वर्णन हुआ है, बस। क्योंकि इस श्लोक के अंदर आया है कि निर्गुण उनके अन्य रूपों में से है। जब हम लोग गुण रहित हो पाते हैं, जब तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम भगवान की स्थिति को समझ पाते हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। हम लोग जब तक गुण में होते हैं तब तक भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाते। अगर तीनों गुण से हम ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान को समझना आसान हो जाता है। अब श्लोक नंबर 22, जस्मिन इदम जतश्चेदम तिष्ठते पे तिजायते मृणमेयी स्व मृजा तस्मय ते ब्रह्मणे नमः। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थित रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाते हैं, उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। अतः ब्रह्म के कारण स्वरूप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। अब इसके, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य डेढ़ लाइन का देते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि परमेश्वर इस दृश्य जगत के कारण है, वे ही सृष्टि के बाद इसके पालन करने वाले तथा प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आगार हैं। चतुश्लोकी भागवतम में एक श्लोक है जिसके अंदर प्रलय में भी भगवान है, सृष्टि में भी भगवान है और ये दोनों के पार भी भगवान है। चतुर्श्लोकी भागवत किसी को याद है? श्लोक, चार श्लोक याद करना चाहिए, पूरे चार श्लोक के अंदर भागवत है। चौथे श्लोक में, चौथे श्लोक में आया है, भगवान सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे और ये दोनों की स्थिति नहीं रहेगी तब भी भगवान है। बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है भागवत के अंदर, अगर पढ़ने के बाद तो ये सब समझ में आती है। अब श्लोक नंबर 23 को हम लोग देखें। यन स्पृशन्ति न विदुर मनो बुद्धि इंद्रिया या स्व अनंत बहिष्ट विततम व्योम वत्तन्न तोस्म्यहम्। कि परम ब्रह्म श्री भगवान से प्रादुर्भूत होकर व्योम की तरह विस्मृत हो जाता है, यद्यपि इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है, तो भी मन बुद्धि इंद्रियां तथा प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर पाती न उसे जान पाती। मैं उनको नमस्कार करता हूं। भगवान की स्थिति का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि परम ब्रह्म श्री भगवान से प्रादुर्भूत होकर व्योम की तरह विस्तृत हो जाता है, यद्यपि उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है, तो भी मन बुद्धि इंद्रियां तथा प्राण शक्ति न तो उसको स्पर्श कर सकता है और न उसे जान पाती है। मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। अब श्लोक नंबर 24, इसको एक एक व्यक्ति पुनरावृत्ति कीजिएगा क्योंकि समय अभाव है, 20 मिनट समय बचा है। देह इंद्रिय प्राण मन धिय अमी यत अंशविद्धा प्रचरन्ते कर्मसु न एव अन्यदा लौहं इव अप्रतप्तं अस्थानेषु तत् द्रष्टपदेशम् एति देहेन्द्रियः प्राणमनोधियोमि। जदंसवेधा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदाहलोहमिवा प्रतप्तम् अस्थाने स्यु तद् दृष्टपदे समेते। देहेन्द्रियः प्राणमनोधियोमि जदंसवेधा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तम् अस्थानेषु तद्द्रष्टपदे समेते। बोलिए। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियोमि जदंसवेधा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तम् स्थानेषु तद्द्रष्टपदे समेति। मतें देहेन्द्रियः प्राणमनोधियोमि जदंसवेधा प्रचरन्ति कर्मसु നൈവാന്യദാലോഹമിവാ പ്രതപ്തം അസ്ഥാനേഷു തദ്ദ്രഷ്ടപദേശമേഷ. ശബ്ദാർത്ഥ അനുവാദ തഥാ താത്പര്യ ഇസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജിക്ക് ദ്വാരാ പതിത്ത പാവാൻ മഹാഭാഗവത് ജഗദ്ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി മൻ ഹി മൻ ഗുരു പരമ്പരാക്ക് പ്രണാം കത്തേ ഹുവേ ആചാര്യോ കി ചരണോ മേ വന്ദന കത്തേ ഹുവേ പ്രഭുപാദ കെ ശബ്ദോ മേ സുനെ ഓർ സമജനെ കാ പ്രയാസ കരേ ഓർ വഹാ പഹുചെ ജഹാ നാരദ് ജി ചിത്രകേതു കോ ഉപദേശ ദേ രഹേ ഹൈ ദീക്ഷാ ദിയെ ഹൈ ഉപദേശ ദിയെ ഹൈ അഭി വഹാ സെ ലോഗ് അലഗ് അലഗ് നഹീ ഹുവേ ഹൈ. इस श्लोक के बाद आगे वाले श्लोकों में आएगा कि इस प्रकार की ऊंच कोटि की उपदेश दे करके नारद जी और अंगिरा जी दोनों ब्रह्मलोक को जाएंगे, अपने अपने लोक को चले जाएंगे. अभी दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, हम लोग वहां पहुंचे, वहां अपने मन को ले चले और यह समझने का प्रयास करें कि उन्होंने किस प्रकार के शिष्य को किस प्रकार का ज्ञान दिया. क्योंकि जिनको देह से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से, मतलब शरीर के किसी भी इंद्रियों से जिनको हम पकड़ नहीं पाते, जो जिनको अगोचर कहा जाता है, उनको अपरोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष दृष्टि से स्तुति करते हुए नारद जी अपरोक्ष रूप से ही उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं. लोग कहते हैं इन आंखों से हम भगवान को कहां देख सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन जब इन आंखों में प्रेम रूपी जब काजल लगा लेंगे तो जहां देखेंगे वहां भगवान नजर आएंगे. लेकिन हम लोगों के आंखों के ऊपर ही संसार रूपी चश्मा के कलर चढ़े हुए हैं. लाल रंग हैं तो लाल दिखाई दे रहे हैं और अन्य रंग हैं तो काले ही दिखाई दे रहे हैं. विभिन्न प्रकार के रंग चढ़े हुए हैं, इसलिए हम भगवान के भगवत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं. अब नारद जी के ज्ञान रूपी आंख से चित्रकेतु महाराज को यह दृष्टि मिली कि जिन पुत्र के शोका वेश में मैं इतना विलाप कर रहा था और जितना यह समय हमारा गया वह बेकार गया. जब तक ऊंच कोटि के साधुओं की संगति नहीं होती तब तक पता नहीं चलती कि भगवान के भजन के बिना हमारा जीवन अगर व्यतीत हो रहा है तो बेकार जा रहा है. इसकी अनुभूति साधुओं के संगति में ही की जा सकती है. अब अनुवाद को हम ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से आप लोग सुनिए. श्रील प्रभुपाद की कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ लोहा भस्म करने में समर्थ हुए, उसी प्रकार देखिए उदाहरण दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में तप्त हुआ लोहा भस्म करने में समर्थ है, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी श्री भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लगते हैं. इसमें केवल कंडीशन एक है कि चाहे हम जितना बड़ा शरीर धारण किए हैं, लेकिन जब तक भगवान द्वारा दे हुई चेतन शक्ति अगर हमें चेतना अवस्थित में चेतना की स्थिति में नहीं लाती, तब तक ये शरीर रहते हुए भी हम कुछ कार्य करने में असमर्थ हैं. पीछे आप लोग सुने कि चित्रकेतु महाराज के पास एक करोड़ रानियां थी, लेकिन शक्तिवान सुस्वस्थ होने के बावजूद भी चित्रकेतु जी के एक भी संतान नहीं थे। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य के अंदर कोई योग्यता नहीं है कि कोई संतति पैदा कर सके जब तक भगवान की कृपा न हो। वही सिद्धांत यहां संकेत रूप में मिलता है कि हम चाहे शरीर, चाहे हमारी शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, प्राण शक्ति हो, जब तक हम चैतन्यावेश में नहीं होते, अर्थात कृष्ण की अनुभूति का आवेश या उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, तब तक हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब भगवान के भगवत्ता का अपरोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में नारद जी यह बता रहे हैं सिद्धांत कि जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक कोई शरीरधारी किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। हम लोग पढ़ते हैं अर्जुन जी के जीवन चरित्र में कि वही गांडीव धनुष अर्जुन जी के पास था, वही अर्जुन जी का शरीर था जब कृष्ण से थोड़ा सा दुराव हुआ, जब कृष्ण द्वारिका को चले गए तो कोल भील उनको हरा करके और गाय और ग्वालों को कष्ट देने लगे, चाहने के बावजूद भी अर्जुन जी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। उनको यह अनुभूति हुआ, यह अनुभव हुआ कि आज कृष्ण हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हमारी शक्ति छीण हो गई है। इसलिए जब तक भक्त के पास भगवान का नाम, भगवान की शक्ति, भगवान की रूप की लीला आवेश की स्थिति अपने हृदय में नहीं है, तब तक हम कुछ करने में असमर्थ हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और यही चैतन्यावेश में है, अगर भगवान का आवेश है, भगवान के नाम का आवेश है, भगवान के भक्ति का आवेश है, तो एक भक्त सब कुछ करने में समर्थ है। यही तो कारण था कि पहले के ऋषि मुनि लोग घड़े से पुत्र उत्पन्न कर देते थे, क्योंकि वो भक्ति का आवेश था, एक भक्ति की शक्ति थी, एक उनके अंदर तपस्या का फल था, जो कर देते थे वो हो जाता था। और आज के कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या यह बताई गई है कि मनुष्य को हर पल में यह प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य बोलने का प्रयास करें, लेकिन हम लोग अपना सिद्धांत ही बना लिए हैं, रास्ता ही बना लिए हैं केवल झूठ बोलने का। और कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या बताई गई है कि सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आदमी हर बात में एक अपनी गलती को छिपाने के लिए सौ झूठा और बोलता है। जिस प्रकार अग्नि में तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रियां परब्रह्म की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती। बिल्कुल अस्पष्ट अर्थ है कि अगर आग के संग में लोहा है तो उसके अंदर दाहिका शक्ति आ जाती है, वो किसी को जला सकता है, अन्यथा जब तक आग की संगति में लोहा है तभी तक उसकी दाहिका शक्ति है, अन्यथा आग से लोहा अगर दूर हो गया तो उसकी दाहिका शक्ति चली गई। यहां यह सिद्धांत है कि हम भगवत तन्मय होकर के जिए, यहां सिद्धांत यह झलकता है कि हम भगवान के बिना अगर जी भी रहे हैं तो हमारा जीना वास्तव में जीना नहीं है। भागवत में एक श्लोक आया है कि जीते हुए भी मुर्दे के समान है, या अन्य श्लोकों में बताया गया है कि द्विपाद पशु, दो पैर वाले दो टांग वाले हम पशु हैं, अगर भगवान के बिना भक्ति के जी रहे हैं तो। और देखिए यहां नारद जी यह उपदेश दे रहे हैं चित्रकेतु को कि इससे पहले जिस पुत्र आवेश में थे, जिस पुत्र के आवेश में थे, शोका कुल आवेश में थे, उस समय का समय जो था आपका पूरा व्यर्थ गया है, और यह अपने आप अनुभव कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज। नारद जी इतने शुद्ध भक्त हैं कि जो भी उनके संग में आया उनको उन्होंने दीक्षा शिक्षा दे करके ऐसा एकनिष्ठ भक्त बनाए कोई संसार को छोड़ दे। और हर गुरु का यही प्रयास होना चाहिए सिद्धांततः कि हम इस शरीर से जी तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण के शक्ति से चल रहे हैं तो कृष्ण के लिए ही कार्य करें। इसीलिए उनको गुरु पद दिया जाता है। गुरु पद कोई साधारण पद नहीं है। भगवान अपने समकक्ष पद दे देते हैं गुरु को, अपने बराबरी का, क्योंकि वो भगवान को ही बांटता है। भगवान को बांटने वाला जीवात्मा गुरु है। जो भगवान को दे सकता है तो उसको भगवान अपने बराबरी का पद दे देते हैं। इसलिए भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत का जो महिमा बताया गया है वो लगभग सेम है। नारद जी की संगति में जिस भक्त ने आया उसका आप चरितावली भागवत के अंदर पढ़ सकते हैं कि कितने एकनिष्ठ भक्त बने। आगे बताएंगे नारद जी इसी मंत्र, जिस मंत्र को उन्होंने दिया चित्रकेतु को, और उसकी महिमा बताई हुई। यह कह दिया कि अगर एक निष्ठा के साथ केवल सात दिन सात रात इस मंत्र का अगर जाप करोगे तो आपके समक्ष संकर्षण, भगवान संकर्षण प्रत्यक्ष आपको दर्शन देंगे और आपको उनके धाम में प्रविष्टिकरण होगा, प्रवेश हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं इस श्लोक के संदर्भ में हम लोग समझने और पढ़ने का प्रयास करते हुए प्रभुपाद के शब्दों को सुनते हुए चले, क्योंकि मैं एक और सूरदास जी की चरित्र सुरसागर से ठीक से कोई एक पद भी गाना चाह रहा था लेकिन लगता है टाइम नहीं मिलेगा। तात्पर्य को हम पढ़ें श्रील प्रभुपाद की। तपा करके लाल किया गया लोहा जला सकता है किंतु वह मूल अग्नि को भस्म नहीं कर सकता। देखिए कितनी बड़ी सिद्धांत प्रभुपाद दे रहे हैं कि आग के संपर्क में लोहा आया तो उसके अंदर जलाने की शक्ति आ गई, लेकिन जिस मूल आग के संगति में यह लोहा गया उस आग को यह लोहा नहीं जला सकता। जितनी गहराई में प्रभुपाद जी डूब पाते हैं शायद हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। सिद्धांत अकाट्य सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। तपाकर लाल किया गया लोहा जला सकता है किंतु वह मूल अग्नि को भस्म नहीं कर सकता। अतः ब्रह्म के सूक्ष्म कण की चेतना पर ब्रह्म की शक्ति पर पूर्णतया आश्रित है। इसीलिए आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई गिला नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मार नहीं सकता। इसीलिए मूल अग्नि है, भगवान का अंश है आत्मा, इसलिए उस आत्मा को कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। यह भी सिद्धांत है तात्पर्य के पहले वाले लाइन में। अब प्रभुपाद जी भगवद गीता के श्लोक कोट कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। बद्ध जीव मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त करता है। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है और जब भगवान की शक्ति लौटा लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियां में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। अब कहां रह गई किसी दूसरे की शक्ति, जिस पर हम लोग अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं कि या मैंने किया या मैं या मेरा है या मेरी है। अब किसका है? इन सब चीजों को पढ़ने के बाद तो पता चले कि यह शरीर किसका है। रूपा जी इससे पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक इस शरीर की संगति, जिस आत्मा की जिस शरीर से थोड़े देर के लिए संगति होती है तो वह परमानेंट उसी को अपना बनाने का प्रयास करता है। जीवात्मा की यह मेरा हो गया या मेरा ही रहेगा और इसी आवेश में वो जीता है और इसी आवेश में रहने के कारण वह इस संसार सागर से पार नहीं जाता है। यह मेरा या मेरी या शरीर या ये वो करते करते इसी आवेश में रम जाता है और रमने के बाद यहीं का यहीं रह जाता है। इसलिए जिसका इस आत्मा का जिससे परमानेंट संबंध है उसकी संगति यहां दी गई है कि आग के संगति में ही लोहा शक्तिमान बनने का प्रयास कर रहा है या उसके अंदर शक्ति है। अगर अलग हो जाता है तो उसकी स्थिति देखिए। वैसे ही अगर भगवान का अंश इस शरीर से हटा लिया जाता है तो शरीर की स्थिति देखिए कि उसके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं रह जाती। यह कथा ही नहीं है, बहुत गहरी सिद्धांत है इन श्लोकों के अंदर। सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण और कथा से हम साधारण तरीके से समझ सकते हैं, ये सब बातें हैं। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है और जब भगवान शक्ति लौटा लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। शरीर में 5 कर्मेंद्रिय तथा मन समेत 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, किंतु वास्तव में पदार्थ के खंडों के सदृश हैं। उदाहरण स्वरूप मस्तिष्क पदार्थ की अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जब वही श्री भगवान की शक्ति से विद्युन्मय होता है तो कार्य करने लगता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लाल होने पर लोहा जला सकने की शक्ति रखता है। हमारा दिमाग जब भगवान के शक्ति का आवेश होता है तभी काम करने लायक होता है, नहीं तो उस आवेश को अगर भगवान रोक लेते हैं तो आदमी जी रहा है लेकिन जड़वत है, देख रहा है, चल रहा है लेकिन क्या सोच रहा है उसको पता ही नहीं चलता, जड़वत बन जाता है। जीते हुए भी वह कुछ करने की शक्ति में नहीं होता है क्योंकि उसका पदार्थ मात्र एक मस्तिष्क बस जाता है। जब भगवान अपना आवेश हटा लेते हैं, अपनी शक्ति का थोड़ा सा अगर वो संचारित करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य का दिमाग बंद हो जाता है, कुछ काम करने की शक्ति उसके अंदर नहीं रह जाती। और यह देखा जाता है प्रचलित भाषा में भी, जब किसी मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता तो जहां खड़ा रहता है वहीं खड़ा रह जाता है, जहां बैठा वहीं बैठा रह जाता है, कहीं देख रहा है तो देखते ही रह जाता है। उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक विद्युतोन्मय लिखा हुआ है इसके अंदर शब्द, जब तक बिजली का मतलब ऊर्जा जिस प्रकार हटा ली जाती है तो ये पंखे बेकार हो जाते हैं, नहीं चल पाते, वैसे ही भगवान अगर अपनी शक्ति की संचारित स्थिति को साइड में कर लेते हैं तो मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारे जगते रहने या स्वप्न देखते समय भी मस्तिष्क कार्य करता रहता है, किंतु हमारे संज्ञा शून्य होने या प्रगाढ़ निद्रा के समय निष्क्रिय रहता है। वह तभी कार्य करता है जब उस पर ब्रह्म या परब्रह्म स्वरूप श्री भगवान की कृपा दृष्टि होती है। यह वह विधि है जिससे यह समझा जा सकता है कि सूर्य प्रकाश की भांति परब्रह्म श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, कृपा जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है, सर्व जगह विदित है, सूर्य के उगते ही सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार अगर उस दृष्टि में हम आएंगे, अगर हम अपने आंखों को फैला करके देखेंगे तो सर्वत्र अगर ठीक से देखना की शक्ति है हमारे अंदर तो यह नजर आएगा कि भगवान के शक्ति के बिना सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अगर भगवान अपनी शक्ति संचारित नहीं करते, उनके शक्ति के बिना इस जगत में कुछ है ही नहीं, इसीलिए भगवान को शक्तिमान कहा गया है, जहां से सारी शक्तियां आती हैं। उनके बिना किसी की शक्ति कार्य नहीं करती। सूरदास जी एक पद के अंदर रचना करते हैं, सूरदास जी गा रहे हैं एक पद के अंदर कि मैंने केवल आपका भरोसा किया कि आप ही सबकी रक्षा करते हो और हमारी भी रक्षा करोगे, इसलिए मैं इस स्थिति पर पहुंचकर सारे देवताओं को भी मैंने छोड़ दिया कि कोई देवता हमें इस संसार से पार नहीं ले जा सकता। केवल भरोसा मैं आपका किया कृष्ण, अगर आप हमारी अगर रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन इस मझधार से मुझको पार करने वाला है, अन्यथा कोई नहीं है। अब तो मझ तो मोही उबारो, हे कृष्ण अब मुझे अगर आप नहीं उबारते हैं, अगर अब आप हमें उद्धार नहीं करते हैं तो इस जगत में हमको और बचाने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। इसलिए कृष्णैक शरणम लेना है, कृष्ण का ही शरण लेना है। अगर दूसरे के शरण में जाते हैं तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए जहां से सारी शक्ति आती है उसके शरण में रहेंगे तो उसके पास तक जाने में और इस संसारिक शक्तियां डरेंगी और वहां तक न पहुंच पाएंगी न हमको हिला पाएंगे। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत है कि हमें एकाकी भक्ति करनी चाहिए, केवल एक ही की उपासना करनी चाहिए। आदर तो हम किसी को दे सकते हैं, देवी देवता भी परम आदरणीय है, ये नहीं कि आदरणीय नहीं है। कभी भी भूल करके भी निरादर देवताओं की नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्ति करनी चाहिए तो केवल कृष्ण, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सिद्धांत है, सिद्धांत ऐसे ही आचार्य लोग नहीं लिख देते हैं कि एकाकी भक्ति करनी चाहिए। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप वो पहुंचते हैं उस स्थिति पर कि कृष्ण के अलावा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तब प्रभुपाद जी को यह सारी सिद्धांत झलक आ रहा है और एक एक लाइन में प्रभुपाद जी केवल सिद्धांत ही देकर के हम लोगों को समझाते हैं कि सिद्धांत अगर जिसका पक्का है, सिद्धांत जिसके हृदय में एक बार स्थापित हो जाएगा वो अपने भक्ति पथ से कभी हिलेगा नहीं। और कृष्ण के स्वभाव पर भी हम लोग भरोसा रखें कि अगर एक बार भी कृष्ण की भक्ति अगर करना हम शुरू कर दिए तो कदाचित कहीं अगर किसी व्यवधान से अगर हम भटक जाते हैं तो हम भले भटक जाए कृष्ण को छोड़ना चाहे, लेकिन कृष्ण का यह स्वभाव है कि वो नहीं छोड़ेंगे। यह अकाट्य सत्य है। हम भटकना चाहते हैं, कदाचित हम भटक गए, लेकिन कृष्ण की भक्ति अगर हम किए हैं तो वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। इस पर भरोसा जरूर करना है। परमेश्वर को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश क्यों भगवान का नाम पड़ा? क्योंकि इंद्रियों के वह मालिक है, स्वामी है। भगवान शब्द का अर्थ भी यही है कि जो सारे मतलब भोगने वाली वस्तुएं हैं उनके वान हैं, मतलब नायक हैं, चलाने वाले हैं, उनके नियंत्रक। वे ही ज्ञानेन्द्रियों के एकमात्र संचालक हैं। उपाधि ने लिख भी दिया, जब तक उसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में ईश्वर ही एकमात्र दृष्टा, कर्ता, श्रोता तथा नियंता है। लास्ट सारी सिद्धांत प्रपाद ने दे दी कि हम इस शब्द इस निर्णय पर पहुंचे कि देखने की भी शक्ति भगवान है और करने कराने वाले वही हैं, सुनने सुनाने वाले वही हैं और नियंत्रक भी वही है। तो हम उन्हीं के पास क्यों नहीं जाएं? हम क्यों इस संसार में भटक रहे हैं? क्योंकि हम एकाकी भक्ति नहीं कर रहे हैं। पूरा पूरा भी हमें विश्वास भगवान के ऊपर नहीं हुआ है, इसलिए जत्र तत्र हम लोग भटक रहे हैं। जिस दिन अगर हम एकाकी भक्ति की स्थिति में आ जाएंगे कि कृष्ण ही हमारे हैं और हम उनके हैं तो हम कहीं नहीं भटक पाएंगे। लेकिन स्थिति यह है कि गंगा किनारे गंगादास बनते हैं, जमुना किनारे जमुनादास, इसलिए एकाकी भक्ति हम नहीं कर पाते। अगर प्रभुपाद के सिद्धांतों को अगर कोई अडिग रूप में अपने हृदय में धारण कर ले तो कृष्ण की भक्ति तो वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों ने देखा है, हमने अपने जीवन में कि सन्यासी लोग भी अगर प्रभुपाद के जो दीक्षित जो सन्यासी हैं वो भी अगर प्रभुपाद को जिन्होंने छोड़ा वो कभी अपने को आनंदभूत की अनुभूति करने में आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी जैसे एकाकी कृष्ण के भक्त को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए प्रभुपाद का सिद्धांत कृष्ण को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली सिद्धांत प्रभुपाद ने लिखा है। इसलिए प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का दूत कहा जाता है। अगर ये भगवान के महाप्रभु के पार्षद नहीं होते तो इतनी शक्ति इनके अंदर आता ही नहीं कि अकेला व्यक्ति और इतना बड़ा प्रचार कर दे। इन सब चीजों को जब पढ़ते हैं, जब बाद में विचार करते हैं एकांत में इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, तो पता चलता है कि प्रभुपाद हैं क्या चीज और उन्होंने लिखा क्या और कहां से, और बुढ़ापे में उनकी बुद्धि इतनी काम की। आप सोचिए ना, बुढ़ापे में किसी को खांसने से समय नहीं मिलता, बीमारी से समय नहीं मिलता और बुद्धि ठिकाने पर नहीं होती, उस स्थिति में प्रभुपाद को इतना बुद्धि आया कहां से जो इन सब बातों को लिख पाए। सारी सिद्धांत इस बात पर आकर के टिकी हुई है कि केवल कृष्ण बुद्धि दिए और कृष्ण की शक्ति ही सारी संचारित की हुई है, जिसके बल पर प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा काम किया। आज हम लोग कितने लाखों के तादाद में हैं, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? अगर प्रभुपाद से तुलना किया जाए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह कथा यह शिक्षा हम लोगों को देती है, नारद जी का यह सिद्धांत हम लोगों को यह शिक्षा देता है कि हम उस रूप में इस उपदेश को लें, शुद्ध भक्त की संगति में रहते हुए अगर एक उपदेश अपने हृदय में अगर हम धारण कर लेते हैं कि कृष्ण के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को समझ लेंगे, अपने हम जीवन के जो उद्देश्य हैं कृष्ण प्राप्ति, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण को समझने के लिए नारद जी का यह उपदेश इसलिए सर्वश्रेष्ठ यहां सिद्धांत है कि उस स्थिति को हम सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुन लिए और हम सुनने के बाद यहीं का यहीं छोड़ के चले गए, यह नहीं। चित्रकेतु जी को यह उपदेश उन्होंने दिया तो इनकी उतावला और बढ़ रही है कि इस मंत्र को अगर हम 7 दिन 7 रात जप करेंगे तो भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। क्या यह साहस है हम लोगों के अंदर कि हम लोग इतना उतावले होकर के गर्दन हिला हिला करके जप करते हैं, पता चलता है कि अब हमें भगवान हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं या उनका कोई लीला हमारे सामने आता है? नहीं आता है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं हम खतरा कर रहे हैं, सिद्धांत में त्रुटि कर रहे हैं, जिसके कारण रसा अनुभूति नहीं हो पा रही। यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यह है कि ध्यान से सुनने के बाद, सुनना गुनना और धुनना 3 शब्द हैं, पहले सुन लो, विचार करो, उसके बाद उस चीज को दूसरे को बांटो। हम लोगों को कह दिया जाता है प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, लेकिन प्रचार शब्द का अर्थ शुरू शुरू में जब प्रभुपाद जी ने मेरे गुरु महाराज को भी कहा कि प्रचार करो, तो मेरे महाराज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रचार करो प्रचार करो। जब अकेले में मिले गुरु महाराज तो पूछे कि स्वामी जी मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं, प्रचार क्या करो? तो प्रभुपाद ने खोल करके कहा कि भगवान आप अच्छी कथा कह सकते हो, भागवत आपको ज्यादा जानकारी है, आप अच्छे तरह से भागवत को पढ़ सकते हो, तो इसी को प्रचार करो, इसी को दूसरे को बांटो, और यही किसी को दूसरे को सुनाओगे तो इसी को कहते हैं प्रचार। तब मेरे महाराज के अंदर यह उत्साह आया भागवत पढ़ने की, और उन्होंने कथा और भागवत पर अपनी रुचि बढ़ाई। जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तब तक प्रचार क्या करेंगे, क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसे ऐसे घरों में गया हूं, मैं उनके प्रश्न को सुन करके खुशी होती है कि जो प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं है वो प्रश्न वो लोग पूछ देते हैं, और उत्तर सोच करके देना पड़ता है कि हमसे ज्यादा कहीं ये पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की पुस्तक। पढ़ने की जरूरत है, अन्यथा कहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, पढ़ करके तब हम उसको प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सुंदर जी का पद वहीं का वहीं रह गया, मन में खटक रहा, क्योंकि जब आत्मसमर्पण की भावना से अगर कोई भी आचार्य अगर कुछ गाते हैं ना तो धारावाहिक हृदय में चलते रहता है, और वो सिद्धांत मन में चलते रहता है कि उनकी भाव क्या है। वो दृश्य भी नजर आ रहा है कि वासुदेव घोष जी किस लय में किस टोन में गा रहे थे, स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद जी नृत्य कर रहे हैं। और उसी चीज को सूरदास जी जो भगवान के बाल कवि के रूप में या बाल भक्त बाल कृष्ण भक्त के रूप में उनका वर्णन है, को वो भी केवल उसका हम अनुवाद पढ़ देते हैं, गाएंगे नहीं, लेकिन सूरदास जी के भाव को आप सुनिए। 5 मिनट और समय हम केवल लेंगे। अपने आराध्य की शरण में जाकर भक्त में प्रबल केवल आत्मविश्वास आ जाता है। इसी विश्वास की अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, क्योंकि मेरे दोषों की लज्जा और मेरे गुणों की बड़ाई सब आपको ही मिलेगी। ध्यान से सुनिए, अगर भगवान का भक्त गलती करे तो भी भगवान को सुनना पड़ेगा, अगर वो अच्छा करे तो बड़ाई भी भगवान को ही मिलने वाली है। अर्थात आप ही भले बुरे सेवक के स्वामी कहलाएंगे। मैं सभी कुछ त्याग कर शरणागत बनकर के आपकी शरण में आया हूं और आपके श्री चरणों में दृढ़ता आपकी श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया हूं। आपके प्रताप के बल पर आज मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। अन्य सभी देवताओं तो अत्यंत दरिद्र और भिखारी हैं। भाव सुनिए कि आपके अतिरिक्त अन्य सभी देवता तो अत्यंत दरिद्र और भिखारी हैं, इसलिए मैंने उन सभी देवताओं को छोड़ दिया। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से ही मैंने बहुत अधिक सुख प्राप्त किए हैं। संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त अपनी आत्मा का वर्णन करते हुए सूरदास जी आराध्य से अपने उद्धार की विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु संसार रूपी सागर में डूबते हुए इस अनाथ दास को अब आप क्यों नहीं उबार लेते। हे दीनबंधु, हे करुणा निधि, हे जगत के स्वामी, आप अपने इस सेवक के दुखों को दूर कर दीजिए। मेरे मन रूपी जगत में ममता रूपी घटाएं छाई हुई है, मोह की बूंदे बरस रही हैं और काम वासना रूपी नदी बढ़कर अपार बन गई है। इस अथाह में डूबे हुए मुझे इसकी कहीं भी था नहीं मिल रही है। केवल गुरुजनों की कृपा ही इससे बचने का एकमात्र आधार है। काम और क्रोध रूपी नाला उमड़ उमड़ करके भारी शोर करता हुआ बह रहा है, जिसको पार करने का मार्ग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। माया रूपी बिजली क्षण क्षण में चमक चमक कर दिन रात मेरे इस शरीर को जला रही है। इस संसार रूपी सागर का जल कलयुग के पाप रूपी मलों से दूषित हो गया है, सहस्रों प्रकारों से मुझे डुबा रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि हे नाथ, हे श्रीहरि, आप तो पापियों के हितैषी हैं और पापियों का उद्धार करने वाले, जस का स्मरण कर मेरा उद्धार करके अपने पतित पावन होने के सुजस की रक्षा कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा राधिका रमण जी की उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरि प्रेमानंदे।